ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने आज आईटीओ स्थित नगर निगम के ड्रेन नंबर 12 का निरीक्षण किया। दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर को 2 दशक पुराने आपराधिक मानहानि मामले में 5 महीने की कैद की सजा सुनाई। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए विशेष अभियान शुरू किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने टर्मिनल 1 की छत गिरने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण किया और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 3 जुलाई से नई दिल्ली में 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया एआई समिट का आयोजन करेगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। दिल्ली की लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने आज आईटीओ स्थित नगर निगम के ड्रेन नंबर 12 का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम महापौर शैली ओबेरॉय और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। राजधानी में शुक्रवार को हुई बारिश के बाद शहर के कई स्थानों पर जल जमाव हो गया था, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। इसके बाद से मंत्री आतिशी जल जमाव वाले स्थानों का लगातार दौरा कर रही हैं और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो इसके लिए अधिकारियों को पर्याप्त जल निकासी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दे रही हैं। इस अवसर पर शैली ओबेरॉय ने कहा कि निगम दिल्ली सरकार के विभागों के साथ मिलकर शहर में जल जमाव की रोकथाम के लिए काम कर रहा है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बारिश के दौरान राजधानी के जलमग्न होने को लेकर दिल्ली सरकार के कार्यों की आलोचना की है। आज एक संवाददाता सम्मेलन में श्री सचदेवा ने कहा कि शुक्रवार को शहर में 696 स्थायी जल निकासी पंपों में से 400 पंप काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज भी लगभग 300 जल निकासी पंप काम नहीं करने की स्थिति में है। श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में हर वर्ष मॉनसून के दौरान लगभग 1300 अस्थायी अतिरिक्त जल निकासी पंप लगाए जाते हैं, लेकिन इस वर्ष एक भी नहीं लगाया गया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि शहर में 11 लोगों की जल भराव में डूबने से जान गंवाना चिंताजनक है। उन्होंने मांग की है कि मृतकों के परिवार को दिल्ली सरकार 1-1 करोड़ रूपये का मुआवजा दे। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा है कि राजधानी में बारिश से हुए जल भराव में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति केवल सोशल मीडिया पर संवेदना व्यक्त कर मंत्री आतिशी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि जल भराव में जान गंवाने वाले 11 लोगों के परिजनों को दिल्ली सरकार 1-1 करोड़ रूपये का मुआवजा दे। वहीं श्री यादव ने नए कानूनों के तहत रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना केंद्र सरकार द्वारा गरीब आदमी की आजीविका पर हमला करना बताया है। आज 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आज जिला पर्यवेक्षकों के नामों की घोषणा की है। दिल्ली के सभी 7 लोकसभा क्षेत्रों के तहत 14 जिलों के लिए कुल 42 पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर को दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दायर 2 दशक से अधिक पुराने आपराधिक मानहानि मामले में 5 महीने की कैद की सजा सुनाई है।
साकेत अदालत के मेट्रोपॉलियन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने 25 मई को सुश्री पाटेकर को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि के अपराध के लिए दोषी ठहराया था। 2001 में एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से उन्हें बदनाम करने के लिए सुश्री पाटेकर के खिलाफ मामला दायर किया था। श्री सक्सेना उस समय तक एक गैर सरकारी संगठन नेशनल काउंसिल फॉर सिविल लिबर्टीज के अध्यक्ष थे। इस पर उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में एक स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया था। 2002 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर मामला साकेत अदालत में स्थानांतरित किया गया था। अदालत ने सुश्री पाटेकर को दोषी ठहराते हुए कहा कि उनके कार्यकलाप दुर्भावनापूर्ण और जानबूझकर किए गए थे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह।
दिल्ली पुलिस ने राजधानी के किंग्सवे कैंप स्थित नई दिल्ली नई पुलिस लाइन में आज अपना वार्षिक समारोह कमिश्नरेट डे परेड मनाया। समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली की सुरक्षा करने वाले एक बल के रूप में दिल्ली पुलिस ने विभिन्न चुनौतियों के बीच सार्वजनिक व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने का अनुकरणीय काम किया है। श्री सक्सेना ने कहा कि देश में आज से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। इस दौरान दिल्ली पुलिस की परीक्षा होगी कि वे अपने नागरिक प्रथम और सेवा शांति न्याय के लक्ष्य के बीच समन्वय बनाए रखें। इस बीच दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने कहा है कि तीनों नए कानूनों को लागू करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए विशेष अभियान शुरू किया। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों के निपटारे के लिए 100 दिनों की कार्य योजना शुरू की है। इसी के तहत एक महीने का विशेष अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान में 46 मंत्रालय और विभाग भाग लेंगे। इस अवसर पर डॉ सिंह ने कहा कि महिलाओं के लिए पारिवारिक पेंशन योजना में किए गए संशोधन सकारात्मक प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा कि पहले तलाकशुदा महिलाएं पेंशन लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य थी। संशोधित दिशा निर्देशों में साक्ष्य के रूप में रिट याचिका प्रस्तुत करने पर वे अब पारिवारिक पेंशन की हकदार हैं। डॉ सिंह ने कहा कि ये आवश्यकता प्रावधान के दुरुपयोग को भी रोकती है। इस अवसर पर पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव वी श्रीनिवास, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव डॉ नितिन चंद्रा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल, लेखा महानियंत्रक एसएस दुबे उपस्थित थे। कार्यक्रम में सभी पेंशन वितरण बैंकों के प्रतिनिधियों और पेंशनभोगी कल्याण संघों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। दिल्ली नगर निगम के 248 कर्मचारी आज सेवानिवृत्त हुए। नगर निगम के सिविक सेंटर मुख्यालय स्थित सभागार में एक कार्यक्रम में सेवानिवृत्त कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और लीव इनकैशमेंट के चेक दिए गए। निगम मुख्यालय के अलावा सभी जोन में भी सेवानिवृत्त कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर निगम के उच्च अधिकारियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पौधा भेंट कर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। दिल्ली पुलिस ने अवैध शराब की आपूर्ति करने वाले एक व्यक्ति को राजधानी के नजफगढ़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अवैध शराब के 3,500 क्वार्टर और आपूर्ति में इस्तेमाल किया जाने वाला एक वाहन जब्त किया गया है। दिल्ली पुलिस उपायुक्त द्वारका जिला अंकित सिंह ने बताया है कि जब्त की गई शराब केवल हरियाणा में बिक्री के लिए वैध है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ चोरी और दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत 4 मामले पहले से ही दर्ज हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत गिरने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हवाई अड्डा संचालन नियंत्रण केंद्र एओसीसी का निरीक्षण किया। एक रिपोर्ट।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने हवाई अड्डे की छत गिरने से उत्पन्न स्थिति के बाद वर्तमान संचालन और यात्री प्रबंधन की समीक्षा करने के लिए मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय बीसीएएस, डीआईएएल और एयरलाइन ऑपरेटरों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त जनशक्ति तैनात करने पर भी विस्तृत चर्चा हुई। डीजीसीए ने डीआईएएल और एयरलाइंस के बीच घनिष्ठ समन्वय की सुविधा के लिए वॉर रूम के सक्रिय होने की भी पुष्टि की। श्री नायडू ने सभी हितधारकों को निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करने और यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कठोर मानक बनाए रखने की सलाह दी है। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इस महीने की 3 तारीख से नई दिल्ली में 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया एआई समिट का आयोजन करेगा। मंत्रालय ने कहा कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एआई प्रौद्योगिकी के नैतिक और समावेशी विकास के प्रति भारत के समर्पण को रेखांकित करते हुए सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीएआई पर ग्लोबल पार्टनरशिप के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा और सुरक्षित, संरक्षित और भरोसेमंद एआई के लिए जीपीएआई की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए सदस्य देशों और विशेषज्ञों की मेजबानी करेगा। ये आयोजन कंप्यूटर क्षमता, आधारभूत मॉडल, डेटा सेट, एप्लीकेशन विकास, भविष्य के कौशल, स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सुरक्षित एआई जैसे क्षेत्रों में एआई विकास को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा। इस सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्य मंत्री जितिन प्रसाद और सचिव एस कृष्णन सहित प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रमुख लोग और नीति निर्माता शामिल होंगे। इसमें शीर्ष उद्योग प्रमुख और प्रतिष्ठित आईटी संस्थानों के प्रोफेसर और शोधकर्ता भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज एक समाचार पत्र की उस खबर का खंडन किया है जिसमें कहा गया है कि सीबीएसई एक वर्ष में 2 बार बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं कर सकता है। सीबीएसई ने इस खबर को पूरी तरह से आधारहीन बताया है। सीबीएसई ने बताया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा को लागू करने के लिए विभाग ने विभिन्न हितधारकों के साथ 25 जून को बैठक की थी। सीबीएसई का कहना है कि वह नई शिक्षा नीति और स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा की अनुशंसाओं को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। जामिया मिलिया इस्लामिया में आज से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई और मशीन लर्निंग एमएल पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है। 3 सप्ताह तक चलने वाले इस पाठ्यक्रम में छात्रों को एआई और एमएल के क्षेत्र में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पाठ्यक्रम का संचालन कंप्यूटर इंजीनियरिंग विभाग द्वारा किया जा रहा है। कंप्यूटर विभाग के प्रमुख और पाठ्यक्रम के संयोजक बशीर आलम ने बताया कि पाठ्यक्रम के लिए कुल 792 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, लेकिन 151 उम्मीदवारों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चुना गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट की पुनर्परीक्षा के बाद आज 1563 परीक्षार्थियों के संशोधित परिणाम घोषित कर दिए हैं। नए परिणामों के बाद एनटीए ने सभी परीक्षार्थियों की रैंक भी संशोधित की है। एनटीए ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि सभी विद्यार्थियों के संशोधित स्कोर कार्ड उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसमें कहा गया है कि पात्र 1563 परीक्षार्थियों में से 813 परीक्षार्थियों ने दोबारा परीक्षा दी है। परीक्षार्थी exams.nta.ac.in/neet पर लॉगिन करके संशोधित स्कोर कार्ड देख सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात सबके लिए घर के सपने को साकार करती प्रधानमंत्री आवास योजना पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय में उप महानिदेशक गया प्रसाद तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव कुलदीप नारायण चर्चा में भाग लेंगे। कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नम्बर 0112342150 पर विषय से संबंधित पहलुओं के बारे में विशेषज्ञों से प्रश्न पूछ सकते हैं। राजधानी में आज मौसम आमतौर पर साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज वर्षा और आंधी तथा बिजली कड़कने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली की लोक निर्माण मंत्री आतिशी ने आज आईटीयू स्थित नगर निगम के ड्रेन नम्बर 12 का निरीक्षण किया। दिल्ली की एक अदालत ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को 2 दशक पुराने आपराधिक मानहानि मामले में 5 महीने की कैद की सजा सुनाई। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में पारिवारिक पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए विशेष अभियान शुरू किया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने हवाई अड्डे के टर्मिनल एक की छत गिरने के बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण किया और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 3 जुलाई से नई दिल्ली में 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया एआई समिट का आयोजन करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।